Bad.
गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई परमात्मा और श्रेष्ठ तत्वतः एक ही है। एक ही वस्तु में ये सब दिखाई पड़ता है योग्यता और अधिकार के अनुसार, किंतु रस के विचार से कुछ अंतर है। शक्ति के प्रकाश और रस के प्रकाश के तारतम्य से इन लोगों में कुछ फर्क है। कैसी है? ठीक, जैसे चांद एक है किंतु एंगल ऑफ विजन से वो भिन्न भिन्न रूप में दिखता है। पृथ्वी की छाया से सूर्य की छाया चंद्र पर जितनी अधिक या कम पड़ती है उसके उस पार्ट का नाम वो होता है। जैसे पृथ्वी पर हम आज प्रतिपदा देखा, कल द्वितीया देखा, तृतीया देखा, चौथी देखा, तत्वतः इनमें कोई भेद नहीं है, सभी चंद्र ही हैं। और एक ऐसी स्थिति है यहाँ पर चंद्र पर कोई छाया नहीं होती, परिपूर्ण रूप से वो पूर्णिमा ही सब समय रहती है, किंतु पृथ्वी के घूमने से सूर्य की छाया चंद्र पर पृथ्वी के यहाँ से कुछ कम बेसी पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसलिए चंद्र एक है किंतु कलाओं की दृष्टि से प्रकाश किरणें ये सब अधिक होता है। उसी प्रकार से कृष्ण ही एक परतत्व है, उनमें जो ब्रह्म परमात्मा कर्णाब्दशाही क्षीरोदशाही विष्णु नारायण राम नृसिंह कल्कि भामह ये सब देखते हैं एक ही तत्व है, किंतु भक्ति के तारतम्य से भक्त लोग उस कृष्ण को ही इन रूपों में देखते हैं, इसलिए तत्वतः अभेद है। किंतु शक्ति के प्रकाश के तारतम्य से
सब रूप का बदल गया,
वो स्वरूप का जो भाव है रस का विचार शक्ति के प्रकाश का तात्पर्य ये कृष्ण में संपूर्ण रूप है और लोगों में नहीं, तत्वतः एक ही। और इन तीनों में भी इनमें भी सब में नृसिंह जी और राम और कृष्ण ये परावस्त कहलाते हैं, परावस्त इनमें कुछ अधिक प्रकाश और कृष्ण में उनसे भी अधिक प्रकाश, किंतु तत्वतः एक ही विष्णु तत्व परम तत्व अद्वैय ज्ञान पर तत्व है, कोई भी अंतर। किंतु रस के और शक्ति के प्रकाश के तारतम्य से इनके स्वरूप में कुछ कुछ वैशिष्ट है, भेद नहीं वैशिष्ट है, विशेषता है। जैसे एक ही व्यक्ति आप अपने माता पिता के बेटे हैं, है ना, अपनी स्त्री के पति हैं, अपने बेटा बेटियों के पिता हैं, अपने सखाओं के मित्र हैं, आप आदमी नहीं बदले किंतु उनका दृष्टिकोण पिता माता जिस रूप में आपको देखेंगे भाई उस रूप में नहीं देखेगा, पत्नी उस रूप में नहीं देखेगी, आपके बेटे और मित्र एक रूप में नहीं देखेंगे। ठीक भक्ति के तारतम्य से कृष्ण के प्रति जिसकी भावना जैसी है वो कृष्ण को स्वयं भगवान देखेगा, सबका अंश ही देखेगा और कृष्ण में ही सबको देखेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं, उसमें लिखे हैं रावणान तकर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्र हारी। रावण को मारने वाले एक तरफ कितना भयंकर रूप होगा, कितने बलवान होंगे, और माखन तस्कर वो गोपियों के घर में माखन चुरा रहे हैं, और दूसरी तरफ में गोपियों के वस्त्र हरण कर रहे हैं। कभी कादम्ब कानन के नीचे, कभी नृसिंह, कभी वामन के रूप में आते हैं। ये कृष्ण के अनुभव है तत्वता एक होने पर भी। कृष्ण ही राम के रूप में ये सब क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी उद्दीपन का होता है उसमें। इसलिए सब तत्वता एक होने पर भी शक्ति और रस के तारतम्य से अंश अंशी का भेद प्रतीत होता है, या भेद नहीं वैशिष्ट है। जैसे आप एक हैं, आपका केश आप नहीं है, आपका केश है। आपकी दो आंखें हैं, दोनों आंखें एक नहीं है। हो सकता है कि इसका पावर कम हो, इसका अधिक हो। हमारा एक पावर इसका अधिक है, इसका कम है ना? आंख नाक नहीं है, नाक मुख नहीं है। आप पैरों से चल सकते हैं, सिर से चल नहीं सकते। सिर से चिंता नहीं कर सकते, किंतु भगवान सब कर सकते। ये उनका वैशिष्ट है। राम नृसिंह से उनका भेद नहीं है, किंतु वैशिष्ट है। राम नृसिंह कृष्ण नहीं है, है एक ही तत्व। राम के रूप में, नृसिंह के रूप में, किसी भी रूप में, नारायण के रूप में मक्खन चोरी नहीं कर सकते, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, राश नहीं कर सकते हैं, मैया उनको डांट फटकार नहीं लगा सकती। ये कृष्ण की विशेषता है, वो ऐसे बन जाते हैं। कर्णाधिशायी विष्णु या नारायण ऐश्वर्य परक है, न उनका बाप है, न उनको बेटे हैं, न कुछ। वो ऐसी लीला ही नहीं कर सकते। राम कुछ कर सकते हैं, तभी उसमें मर्यादा है। यह समझ करके कृष्ण में एकांतिक भक्ति।
ये स्वरूप है, ये जो वैशिष्ट है, जो प्रकृति और भेद है, इसको स्वरूप, ये
वो स्वरूपगत है,
सर्वगत है,
तत्वता कोई भेद नहीं।
शक्ति प्रकाश और रस विचार से वैशिष्ट,
राम स्वरूप कृष्ण स्वरूप तत्वता एक होने पर भी स्वरूपतः रस के विचार से दोनों। राम स्वरूप भी नित्य है, कृष्ण स्वरूप भी नित्य है। बर्फ, जल, कुआसा, कुआसा माने फ्रॉक्स, तीनों एक ही तत्व है, किंतु कभी भी पानी को बर्फ नहीं कहे, कभी बर्फ को पानी नहीं कहे, कभी पानी को कुआशा या फ्रॉग नहीं कहें। अलग ही अलग चीज है, किंतु है सब पानी, पानी का भी का। जो कुछ है सब कृष्ण में लगाना, कृष्ण ही मूल हैं, आदि हैं सब। कृष्ण की भक्ति करने से सबकी हो जाती, पूर्ण की भक्ति करने से सबकी हो जाती, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। कोई कृष्ण की सेवा कर रहा है, कोई राम की सेवा कर रहा है, तो राम का सेवा करने वाला कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, किंतु कृष्ण की सेवा करने वाला राम का, नृसिंह का, सबका कर रहा है, किंतु मालूम नहीं होता, किंतु हो जाता। भक्ति में ये चीज देखना है, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं सचमुच के लिए कृष्ण के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। जो सचमुच में कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है, अखिल कृष्ण के लिए चेष्टाएं कर रहा है, जितनी भी चेष्टाएं, सवेरे से उठ करके फिर सवेरे सारी अखिल चेष्टाएं कृष्ण के लिए हो रही है। कृष्ण मैंने यहाँ कृष्ण और कृष्ण के भक्त परिकर सबको, और कृष्ण के लिए अखिल भोग चेष्टाएं, ये चीज दो चीज जो जो जितना इसको पूरा करेगा उतना ही उच्च कोटि का भक्त होगा। क्या कहा बतलाओ? क्या कहा? तुम बतलाओ। कोई भी चेष्टा कर रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जगे, सवेरे 8 बजे तक सोए या 4 बजे तक सोए, या हम श्वास ले रहे हैं, हम दवा ले रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि कृष्ण के? यदि जो कुछ भी चेष्टाएं हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं वो कृष्ण के लिए हो रही है सचमुच ना, हम आरोप करते हैं, यदि आरोप करेगी तो आरोप सिद्धा भक्ति है। और जी सचमुच कृष्ण के लिए सांस ले रही है, सांस इसलिए रहती है कि लेता हूं कि मैं बचा रहूंगा तो कृष्ण की सेवा करूं, साधन भजन करके उनको मैं प्राप्त करके उनकी सेवा करूं, ये हो गया भक्ति। और कुछ कुछ कृष्ण की सेवा मैं करूं और बाकी अपने लिए करूं, उनकी सेवा करने से मैं सब समय प्रसन्न रहूंगा, आनंद से जीवन लोक परलोक हमारा सुधर जाएगा, तो ये भक्ति नहीं, अपने लिए कर, हमको कुछ आराम मिले कृष्ण की भक्ति करने से, तो ये गड़बड़ कुछ होगा। इसलिए धीरे 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 ऐसा करना चाहिए। हम जा रहे हैं कहीं, किस लिए जा रहे हैं? तो यहाँ पर किस लिए आई? कुछ भक्ति की बातें होंगी सुनेंगे, ये तो भक्ति का, और इसमें कुछ दूसरी लालसा हो गई तो गड़बड़। इसलिए आई कि महाराज जी कहेंगे जी देखो तो आती नहीं गई इसलिए जाऊं, तो ये भक्ति नहीं। हमारा मन रखने के लिए ऊपर से यदि कोई आए तो भक्ति नहीं। और सचमुच में इन तत्वों को जान करके हृदय में धारण करके मैं भगवान की सेवा में और अपने को लगा लूंगा, ये मैं खा रहा हूं, वो ठाकुर जी का प्रसाद है कि नहीं, यदि नहीं भी है तो मैं अर्पित हूं कि नहीं उनके प्रति, मैं किस लिए प्रसाद पा रही हूं? इसलिए पा रही हूं शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रहे, भगवान का भजन साधन भजन, सवेरे सो जाऊं जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन। ब्रह्म मुहूर्त किस लिए कहा गया? वो ब्रह्म का मुहूर्त, पर ब्रह्म कृष्ण का मुहूर्त। सारा दिन एक आदमी 24 घंटा किया, वही सवेरे वाला ब्रह्म मुहूर्त वाला नहीं किया, करीब 1.5-2 घंटे, तो सारा जो करेगा वो उसके पार्श्व एकदम उसके बराबर नहीं होगा, 100 के बराबर नहीं, 100 पार। और वो जो 1-1.5 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त में करेगा, चित्त एकदम स्थिर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, उसको कहते हैं ब्रह्म। उसमें थोड़ा सा आदमी करेगा तो उसका, इसलिए उस समय में जग करके उसके पहले चित्त को स्थिर करके उस समय जो नाम करेगा उसमें भगवान का चिंतन है। इसलिए मैं सवेरे खा करके सो जाऊं। अच्छा एक आदमी टीवी देख रहा है, अच्छा टीवी देखने से कृष्ण की भक्ति होगी कि नहीं, या समय बर्बाद होगा? क्या होगा? भक्ति में सहायक यदि हो तो देखेंगे, किंतु भक्ति में सहायक नहीं है तो हम किस लिए देखेंगे? उसमें स्वाभाविक रूप में विरक्ति हो ऐसे तो कृष्ण का कुछ होगा नहीं। एक समय हनुमान जी जबकि रामचंद्र जी लंका विजय करके आए तो सब बंदर भालू जो आए थे उनको सभी लोग उपहार दे रहे थे, रामचंद्र जी की तरफ से उपहार दिया जा रहा, किसी को राज्य, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कपड़े, किसी को लत्ते, किसी को माणिक्य, किसी को कुछ। जब हनुमान जी की बारी आई तो रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया, वो सीता जी की तरफ उन्होंने देखा, और उन्होंने नौलखा हार जैसे मणियां सब वैदुज्य मणि और क्या क्या उसमें लगी थी लेकर के हनुमान जी को पहना दिया। हनुमान जी ने इधर देखा, राम की तरफ में ही देखा, और माला निकाल करके उसको दांत से काट करके तोड़ रहे हैं, और तोड़ करके देख रहे हैं और फेंक रहे हैं। तो सभी लोग हंसने लगे, जी ये देखो आखिर है तो बंदर ही। तो सीता जी को बड़ा दुख हुआ, जी इतना हमने इसको दिया और ये दांत से तोड़ कर फेंक रहा है। तो रामचंद्र जी हंस करके पूछे, जी इसको तोड़ करके फेंक क्यों रहा? तो मैंने इसको दांत से तोड़ा, देखा इसके अंदर में राम राम है कि नहीं, यदि राम राम है तो मेरे काम की चीज, और नहीं है तो फिर तो इसे मैं तोड़ करके फेंक रहा। तो सीता जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ पर राम है तो आप देख लीजिए। कैसे देखूं? अच्छा तो देखो, नख लगाओ, चीर दिया, देखा जी रोम रोम में राम। ऐसा अपना जीवन कोई कर दे तब तो भक्ति होगी। कृष्ण के लिए जो कुछ कर सो रहे हैं कृष्ण के लिए, जीवन रख रहे हैं कृष्ण के लिए, किसी से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण के लिए, जो कुछ कारोबार कर रहे हैं कृष्ण के लिए, हमारा जीवन सबका आधार, ऐसा जीवन कोई कर दे तो कृष्ण को चिंता हो जाती है इसकी परिवर्ष कैसे कर, ये तब भक्ति। कृष्ण के लिए अखिल भोग त्याग, भोग माने क्या? जो अपने लिए करते हैं वो कृष्ण, जैसा रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे सब गोस्वामी, और कृष्ण के लिए सब कुछ कर। रसोई बन रही है किस लिए? अपने लिए ना, परोठा बन रहा है मुझको, मेरी बेटियों को, मेरे स्वामी को अच्छा लगता है इसलिए परोठा बनाओ, या कोई चीज बनाओ। भक्त क्या सोचेगा, कृष्ण को क्या चीज अच्छी लगती है वो चीज बना करके उनको भोग दे करके सब पाए। इस तरह से सबका केंद्र बिंदु कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण इसको जानेंगे कि नहीं, कृष्ण को ये मालूम होगा कि नहीं, ये हमारे लिए कर रही है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, यही भक्ति का सोपान। जब ये थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, अभी पूरा नहीं आएगा किसी को,
अधिकारिता के हिसाब से लगातार अच्छी चेष्टाएं कर पाना लोगों के लिए कई बार लगातार ही ऐसा,
कुछ आदमी कुछ आंशिक रूप में करता है, पूरा नहीं करता, कुछ लोग और उसे अधिक करते हैं, कुछ लोग और उसे अधिक करते हैं। जब भावावस्था आएगी तब अपने आप सब कुछ, निष्ठा तक भी नहीं होगी।
महाराज कुछ लोग आपसे वैसे मिलने आते हैं कि महाराज हमें बताया अभी महाराज क्या सोचेंगे अगर हम नहीं किया, अभी बहुत दिन हो गए, तो ये संसिद्धा भक्ति मानी जा सकती है?
अभी ये भक्ति में नहीं आएगा,
संसिद्धा नहीं है आपके पास
अभी, कहाँ है,
लालसा इतनी है किसी को भी नहीं
होने से, अभी भक्ति में नहीं आया, अभी इसको विश्वास के रूप में ले सकते हैं, श्रद्धा है ना,
अभी श्रद्धा के बिना कैसे आए?
वही श्रद्धा तो है किंतु अभी लपकती हुई श्रद्धा, लपकती जानती है हवा के झोंकों में, जैसे प्रदीप लंफी पे उधर का।
मैं इसको संग से इसलिए बोल रहा हूँ महाराज, क्योंकि आपके पास जैसे हम पहुँचते हैं तो एकदम भक्ति का प्रकाश शुरू हो जाता है, आपसे आपके पास पहुँचते ही बुरी आदत छूट जाती है, उनके पास कई बार खाने की और ये सब कई सालों से वो एक बारी बोलने से छूट जाती है, तो ये भक्ति में बहुत आगे उसका विश्वास बढ़ता है, वो जाप करना शुरू करता है, तो ये संसदा नहीं है आपसे मिलने की लालसा से ही
नहीं, इसको कहना जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, विश्वास हो जाता है कि हम उनके पास में जाने से ऐसा होगा, किंतु उसमें यदि यह कि लौकिक रीति से मेरे नहीं जाने से महाराज जी कहेंगे जैसे देखो तो आते क्यों नहीं हो, आते क्यों नहीं, इसलिए जाना और भक्ति के वृद्धि के लिए जाना, दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना। मैं जाऊंगा हमारे ये सब चीजें जैसे आपने कहा इस ये हो जाएगा, और एक होता है जैसे भाई जाने की तो समय नहीं है, इच्छा नहीं है, किंतु क्या कहेंगे लोग, कहेंगे जैसे पहले से और दूर चले जा, इसलिए भाई जाना इस काम, वो भी अपना देख लेंगे, जैसे हमारा कोई चीज बर्बाद तो नहीं हो रहा है, समय हमारा बिजनेस तो ठीक चलेगा, उसमें से समय निकाल लेंगे, तब उसमें ये अभी विश्वास है, अभी श्रद्धा है थोड़ा थोड़ा, वो भी श्रद्धा भी परिपक्व नहीं है, वो जो मैं कर रहा हूँ वो तो आएगा निष्ठा, निष्ठा अधिष्ठान में भी बहुत सी कमियां हैं, उसमें रुचि नहीं आई, उसमें हरिनाम करने में जोर लगेगा, नींद आने लगेगी, आलस्य आएगा, विशेष करके हरिनाम करने में थोड़ा सा मन ये भी लगेगा, किंतु भगवान की लीला कथाओं को चिंतन करने में वश हो जाएगा, मानसिक क्रियाओं में सो जाएगा और गोवर्धन की परिक्रमा में मैं कहूँ जैसे ये करना है वो करना है। अभी जो युधिष्ठिर और अर्जुन इत्यादि ये सब संग्रह करना है, ये करना है, उसे बड़ी रुचि होगी क्योंकि शारीरिक परिश्रम उसमें है ना, और उसमें प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, तो ऐसे कामों में रुचि होगी। और जो शुद्ध है भक्ति चाहते हैं उनको सब चीज ऐ कांति स्वरूप सिद्धा भक्ति में उसे चित्त प्रसन्न रहेगा। जो भक्ति में प्रवेश कर गया है उसका लौकिक मान ले के कुछ लाख रुपए खर्च नष्ट हो गए उसके लिए चिंता नहीं होगी, कहे अच्छा ही बच गया, और कुछ आ गया तो भी उसको आनंद नहीं, अब वो चिंता करेगा इनके जैसा वो कृष्ण के सुदामा विप्र जैसा, अब हमारा गड़बड़ हो गया, अब मैं कृष्ण की स्मृति नहीं होगी, अब धन में ही मैं लग जाऊंगा, हमारी भक्ति तो गई। तो कृष्ण आकर के समझे नहीं नहीं तुमको माया नहीं पकड़े, इस तरह कोई भी संसारिक वस्तु के नष्ट होने पर भी उसका चित्त रानी युक्त नहीं होगा, और कोई भी संसारिक वस्तु मिलने पर उसे हर्ष नहीं होगा, खुद आ रहा है जा रहा है। यदि भक्ति हुई थोड़ी सी और संसार का सभी कुछ चला गया तो फिर उसमें भक्ति ही नहीं चाहिए। यही गड़बड़ी है, हमारे काम में परेशानी आई, कृष्ण के काम में परेशानी नहीं आई, यही गड़बड़ है। तो अभी भगवान पर पूरा विश्वास नहीं रहा, आप समझते नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये प्रभु पर छोड़ दो, तुम अपनी भक्ति वृत्ति को बढ़ाने की चेष्टा करो, बस ये मत देखो, मैंने ये देखो गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेश, फल पर मत जाओ, अपने कर्तव्य पर अपने भजन साधन पर निकल, जो कुछ हो रहा है वो भगवान ठीक समझ करके दे रहे हैं। यदि कोई बहुत बड़ा भारी रोगी है जब ये ऑपरेशन थिएटर में ले गया गया वो एकदम घबराने लगा कि आज हम जाने क्या होगा, और ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, और घर वाले देखते हैं और डॉक्टर देखते हैं कि आज इसका ऑपरेशन नहीं तो कल मरेगा, वो इस चीज को नहीं समझता रोगी, घर वाले समझते हैं, इसलिए कृष्ण सब समझते हैं कि इसको क्या ऑपरेशन करना है, इसको बीमार बनाना है कि इसको स्वस्थ बनाना है, यदि बीमार नहीं बनाते तो हो सकता है कुछ खुराफात करता, कुछ गंदा काम कर लेता, उसका चित्त इधर उधर जाता, भगवान ने उसको बुखार दे करके उसको उधर से हटा करके दिया, उसको सामंजस्य करना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं जब हमने उनको समर्पण कर दिया, वैसे जैसे गाय को बेच देने पर कहीं भी जाती है खाती है और दूध देती है, तो वैसे जब हमने आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दिया, अपना देखना नहीं है उनको समर्पण कर दिया, वो जैसा हमको प्रयोग मिला है। इस जैसे कुंती जी हैं, कुंती का कि बहू द्रौपदी जी को नंगा कर रहा है, भीम को विष दिया, उसको जलवाने की चेष्टा की, महाभारत युद्ध हुआ। जब महाभारत युद्ध होकर के इनको राज्य मिल गया तो कृष्ण उस समय द्वारका जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी थी, प्रभु आपसे एक ही हमारी प्रार्थना, हमको आप दुख दिया कर, इसमें आपका स्मरण हो और हमारे निकट रहिए, और यदि सुख आएगा तो छोड़ करके चले जाएंगे द्वारका, आपकी सेवा करने के लिए हमको कुछ ये नहीं रहेगा, सुयोग नहीं रहेगा, इसलिए हम सब समय आपकी सेवा में नहीं झुकते। ये संसार का दुख और कष्ट का कोई भी मूल्य नहीं, वो तो आप सब कुछ बचा रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा समर्पण होना चाहिए भगवान के चरण में भक्ति करने के। भक्ति भक्ति बड़ी सहज लगती है, किंतु उतनी सहज नहीं है जितना हम समझते हैं। नाम लेने से जन्म मरण दूर हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, दो कष्ट चले जाएंगे, किंतु जो ब्रज का प्रेम है ये साधारण है, बहुत ऊंची चीज। इसके लिए कोटि कोटि जन्मों में बड़े बड़े विरक्तों ने तपस्या की, कठोर आराधना की ब्रज की भावों के अनुसार में, तब उनकी सिद्धि हुई। अभी तक नारद को हुआ कि नहीं कोई ठीक नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी अभी सुख से उनकी प्रिया बनेंगे कि नहीं, बड़ा कठिन है। उद्धव जी को नहीं हुआ, भाग आए वृंदावन से, उनको गोपियों का कष्ट देख करके उनको कष्ट समझा, भक्ति बड़ी दुर्लभ चीज है। और कोई भी संप्रदाय है, हम गौड़ीय वैष्णव को छोड़ इतना सूक्ष्म विचार करेंगे, हम लोगों के भी और दूसरी जगहों में नहीं है। भगवान का नाम करने से ही भक्ति हो जाएगी ये कोई माने नहीं है, भगवान को पुष्प अर्चन कर दिया बस हो जाएगी भक्ति, नहीं, उससे तुमको कुछ फल मिल सकता है, अच्छा धन धान्य ये सब जागतिक चीज मिल जाए, भक्ति जो प्रेम वाली है वो नहीं होगी, ये शुद्ध भक्ति ही नहीं है। शुद्ध भक्ति कब आएगी? वैष्णव के संग में निष्ठा के बाद में, जब रुचि हो जाएगी, संसार की तरफ में कोई दृष्टि नहीं रह जाएगी, कोई भी तन ऐसी शुद्ध है, ऐसा जन्म मिलेगा। फिर यदि मान ले कि सुअर होकर के हम लोग आए तो सुकरी और सुकर मिल जाएंगे, बेटे मिल जाएंगे, किंतु ये वैष्णव का संग और भक्ति कृष्ण के प्रति और ये कथाएं सुनने को नहीं मिलेगी किसी से, इस चीज को समझना चाहिए। सारी चेष्टा भक्ति में, पहले हम लोग नहीं कहते हैं ये करो, क्यों ऐसा कहेंगे तो कोई लगेगा ही समझ में उनके नहीं, कहेंगे देखो तुम भक्ति करेगा तो तुम्हारा धन काफी, जो चाहेगा वही धन हो जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, संपत्ति बढ़ जाएगी, सुंदर लड़के से शादी होगी, सुंदरी लड़की से शादी होगी, अच्छे पुत्र होंगे और स्वर्ग भी तुमको बहुत धन धनाढ्य रहे, तो इससे लोग आकर्षित हो और आगे कहने कृष्ण सब कुछ ले लेंगे तब तो कोई नहीं है। कृपा को समझना बड़ा कठिन, किसी का धन सर्वस्व हरण करते हैं और किसी को सर्वस्व दे देते हैं, सुदामा विप्र को दिया और लोगों का हरण कर लेते हैं, जिसको आसक्ति है उसका हरण कर लेंगे, जिसको आसक्ति नहीं है उसका सर्वस्व कृष्ण की सेवा के लिए तो उसको दे दें, पांडवों को दे दिया और दुर्योधन का सब कुछ खत्म कर दिया वंश में, इसलिए सब समय सोचना चाहिए जी कृष्ण की भक्ति कैसे होगी, हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रसोई किसके लिए, अपने रुचि संसार में बन रही है या किसके लिए हो रही, घर वालों की रुचि के लिए हो रहा है या कृष्ण के रुचि के। कृष्ण मिर्च नहीं खाते अभी, मक्खन मिश्री मीठी मीठी चीज ये खाते, और हमने रसोई में खूब डाल दिया पिसा हुआ लाल मिर्च और तेल घी से सारा बोर कर दिया, लेंगे कि नहीं लेंगे, देखते हैं कि हमको इसमें रुचि इसलिए बनाए, और भक्त बनाता है उनके लिए। सब चीजों पर विचार कर, कृष्ण को क्या चीज अच्छी लगती है, कृष्ण को क्या चीज अच्छी लगती है, भाव, भाव चीज अच्छी। अच्छा जैसे एक तुलना करो, दुर्योधन के यहां कृष्ण ने कितना 56 भोग उनके सामने आया, उलट करके उधर नहीं देखा। दुशासन का सोने का राजभवन, उसमें विश्राम नहीं किया, एक घूंट पानी नहीं लिया, विदुरानी के पास में गए, विदुराजी उनको देख करके प्रेम में पक गई, क्या खिलाऊं क्या करूं, विदुर दे तो घर में नहीं। वो क्या खिलाएं, एकदम प्रेम में पक करके केले को छुड़ा रही हैं और भूल गई जो केला क्या है, छिलका क्या है, केले को क्या है, छिलका क्या है, केले को फेंक दिया, छिलका कृष्ण को दे रही हैं, बड़े प्रेम के साथ में आरोप कर। द्वारका में किसी रानी ने इतना अच्छा नहीं दिया, अब बड़े प्रेम से खाए। विदुर जी आए दे करके जो जुला उठाए, अरे एक छिलका दे रहे, कृष्ण ने उनको मना कर, डिस्टर्ब मत करो, हमको ये चीज अच्छी लग रही, मैं भाव का भूखा हूँ, वस्तु का भूखा। अच्छा एक तरफ ये रखो, कितने प्रसन्न है ना, और राधा जी कह रही हैं सखियों से उस काले को कुंज में मत आने देना, ना? उनको आने नहीं दे रहे, रुक करके बैठी हैं, उधर से इधर देखती नहीं, उधर है तो वो पीछे पीठ कर दिया और सखियों को कह दिया कि इसे बाहर करो। सखियां करे आज यहाँ पर प्रवेश नहीं, आप सीधे चले जाइए, जहां से आ रहे हैं अभी वहीं पर सीधे लौट जाइए। अच्छा विदुरानी का प्रेम अधिक चखेंगे कि ये प्रेम, कौन, ये तो गोपियां उपेक्षा कर रही हैं, वो कोटि गुण उसका गुण गुणा कर दिया जाए किसका, विदुरानी के प्रेम को, तभी गोपियों के प्रेम के बराबर इतना भी नहीं। ये कौन समझेगा, साधारण लोग नहीं समझे। हम लोगों का सौभाग्य जो हम लोग इधर चल रहे हैं, श्रद्धा है किंतु इधर ही चलेंगे इस प्रेम की तरफ। यशोदा मैया कितना लाड प्यार करती है, कितना लाड प्यार करती है, किंतु कृष्ण की को खिला रही है, उनकी भूख नहीं मिट रही, उनको क्या भूख है, मैया कब सो जाए, मतलब ये प्रेम का आदर्श है। आइए इधर में जगह है, आ जाइए इधर, अखंड है किंतु उसका तारतम्य है। एक नौकरानी कृष्ण की घर में, दिन भर काम करते करते सवेरे से सवेरे तक 24 घंटा काम कर रही, राधा जी कृष्ण का क्या कर रही है, कृष्ण के लिए रसोई बना रही है, न खिला रही है न पिला रही है, क्या कर, क्यों उनको आदर कर, कारण क्या है, हैं? वो राधा जी क्या करती हैं, पैर दबाती हैं, ना रसोई बना रही हैं, ना क्या करती हैं, क्या करती हैं? एक पत्नी है, पति के लिए क्या करती है, अधिक नौकरानी दिन भर करती है, बच्चे को भी देखती है, देखती है ना, बच्चे को भी वही देख रही है, रसोई भी वही बना रही है, और ये पलंग तोड़ती है, और पति उसके लिए सर्वस्व दे देगा, नौकरानी के लिए एक दिन का तनख्वाह दे देगा, अधिक से अधिक उसको 2-4-5 रुपये और बड़ी भारी दया हो। क्यों हाँ, संबंध तो नौकरानी का भी उसे है। ये भक्ति का संबंध, प्रेम का उत्कर्ष। ये प्रेम का विचार कौन करेगा? बिना वैसे प्रेमी भक्त का, गुरु का, किसी में कोई कल्पना नहीं कर सकता है इस चीज की। ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं सीमा आंक सके, और हम लोग, हम तो भी कहां है प्रेम, न भक्ति है न कुछ। जब तक कि 24 घंटा भजन नहीं होगा और गुरु के प्रति वह ऐसे वैष्णव के प्रति समर्पित आत्मा नहीं होगी। हमारा अभी कुछ है घर पर है? आपके कितने लड़के हैं? कितने? एक पत्नी है, कुछ व्यवसाय वाणिज्य, आपका घर भी है, आपकी घड़ी है, आपका ये सब है, अभी आपका बहुत कुछ है। जब सब कुछ नहीं रह करके कृष्ण का हो जाएगा ना, वो भी ब्रज के भावना के अनुसार में हो जाएगा। उस समय में कृष्ण बच्चों के साथ में झगड़ते हैं, उनका जूठा लेने के लिए झगड़ते हैं, ऐसे मालूम होता है कि उनमें कितना विवाद चल रहा है, ये उनका है उनका है, किंतु ये बहुत ऊंची चीज है। ये सब भजन के ऊपर निर्भर करता है। प्रेम एक निराली चीज है, प्रेम होता है टेढ़ा, सीधा नहीं होता। प्रेम की कुटिल गति समझना पड़ा। मान ले कि यहाँ पर किसी से कोई संत का अधिक प्रेम है तो उसको नहीं बुलाएगा, जब सब लोग चले जाएंगे तो उसको बुलाएगा, उससे अधिक बात नहीं करेगा, वो आंखें से ही बात कर लेगा। भगवान का ऐसा ये भक्ति का डिफिशिएंसी समझने की चेष्टा करें। भक्ति किसको करें? जब तक इस संसार में मेरा और मैं ये भौतिक है, तब तक भक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर। तब वही गुणी भूता भक्ति, संग सिद्धा आरोप सिद्धा भक्ति है। कोई ये श्लोक पढ़ रहा था, उसमें देखा साधु संघों की महिमा, साधु संघ की कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्र मल्लम अपि मे कलम कोटि जन्म सुकृतिर् न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कुतु अपि यदि लभ्यते, कुतु अपि माने क्या, जहां कहीं हमारे चाचा गुरु हैं कि हमारे गुरु हैं कि बाहर के हैं कि और संप्रदाय के हैं कि कहां के हैं, ये सब विचार नहीं। जहां वो भक्ति, भक्ति रस मित मिले, जिसके मति कृष्ण प्रेम में डूबी, वो कहीं भी मिल जाए उसे खरीद ले। ये राय रामानंद और महाप्रभु जी का संप्रदाय एक है, एक जगह उन्होंने दीक्षा ली थी, राय रामानंद का कोई मिलता ही नहीं, ये उनके गुरु कौन थे, कौन कहां थे, है कोई विचार? हरिदास ठाकुर का गुरु कौन था, किस संप्रदाय के थे? स्वरूप दामोदर जी मायाबाद से आए, काशी में उन्होंने ब्रह्मचर्य वेश, स्वरूप उनका नाम। यदि उनके गुरु परंपरा रखी जाए तो वो मायावादी और द्वैतवादी। महाप्रभु जी के और जो सब थे, सिखी माई थी, ये महाप्रभु जी के संप्रदाय में थी ना, कहाँ के थे? प्रताप रुद्र किसके शिष्य थे? सात भव भट्टाचार्य किसके शिष्य हुए, या फिर महाप्रभु जी के शिष्य हुए, या किसी के स्वरूप दामोदर राय रामानंद?
सब कुल मिला के महाप्रभु जी के हो गए।
ये चीज है, आजकल का भौतिक आदमी ये चीज को नहीं समझता, वो समझता है कि हमको छोड़ देगा तो हमको उसके पैसे और उसकी इज्जत जो हमको नहीं मिलेगी, वो उनका हो जाएगा। कृष्ण भक्ति उनका मूल उद्देश्य यदि एक है, और हम भी उसमें सहायता करते हैं, जैसे ये कृष्ण की भक्ति को पा जाए तो उसको आनंद होना चाहिए ना। मैं 10 आदमी को पानी पिला रहा था और एक आदमी आकर के हमारे साथ में वो भी पानी पिलाना आरंभ किया, तो हमको आनंद होना चाहिए ना, जैसे ये आखिर हमको उसमें कष्ट होगा क्या चाहिए? यदि मैं कृष्ण की भक्ति के लिए सबको बांट रहा हूँ और दूसरा आदमी भी बांट रहा है तो उसको आनंद होगा कि दुख होगा? तो आजकल कैसा ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भक्ति का विचार नहीं। इसलिए जीवन को अब इधर उधर करने की जरूरत नहीं, शुद्ध रूप में शुद्ध भक्तों के साथ मिल करके अपनी भक्ति की वृत्ति को बढ़ानी चाहिए। मैं रोज रोज आपको याद करता हूँ, आप एक दिन भी जीवन को बर्बाद नहीं करना है, जिस किसी भी उपाय से, जैन के न उपाय न कृष्ण मनो निवेश, जिस किसी भी उपाय से चित्त वृत्ति को कृष्ण में लगाए। यदि हमारा संसार का कुछ इसमें नष्ट होता है, कोई भी बात नहीं, कोई हानि नहीं, वो तो हमारा रखा हुआ है दूसरे जन, इसलिए उसके लिए चिंता है, भगवान के लिए भजन किया जाए। जोग क्षेम वहम में हम, कृष्ण स्वयं उसका जोग और क्षेम बन करते, जो कुछ उसको जरूरत है वो कृष्ण पूरा करते। वो हारमोनियम कहाँ? दिन कहीं जा रहे थे, चलते चलते कृष्ण को प्यास लगी। अर्जुन जरा पानी कहीं से खोज कर ला। अर्जुन रथ से उतर कर पानी के लिए खोज में चले। अर्जुन ने देखा जे कुछ चिड़िया इधर में जा रही हैं और फिर उधर से आ रही हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि गर्मी का दिन है, ये पक्षियों को जहाँ पर पानी मिल रहा है उधर जा रही हैं, फिर उधर से आ रही हैं, तो उधर ही चल, जिधर ये जा रही हैं। चलते चलते देखा जे जमुना का किनारा और पानी बड़ा निर्मल स्वच्छ भरा पड़ा है, वहां जाकर के देखने के साथ देखा कि एक कोई महात्मा जी हैं, दाढ़ी और केश बड़े हैं और यहाँ पर धनुष रखा है और यहाँ पर फरसा एक रखा है। उनको आश्चर्य हुआ जी ये महात्मा जी इतने ध्यान लगाए हुए हैं और महात्मा हैं, ये धनुष बाण किस लिए रखे हैं, त्यागी का वेश और फरसा किस लिए रखा? उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको प्रसन्न करा करके बोले कि महात्मा जी मेरी एक शंका है, आप इतने महात्मा अहिंसक होकर के भजन कर रहे हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर तीर धनुष रखे हैं, बाण धनुष, और इधर में फरसाप ने रखा है, किस लिए? ये बहुत गुप्त बात है, मैं किसी को बतलाना नहीं चाहता। तभी तुम जब बड़े नम्र होकर के पूछ रहे थे, बतला रहा हूँ ये धनुष बाण उनके लिए, अर्जुन के लिए है, और ये फरसा है द्रौपदी के लिए। ये अर्जुन ये जानता नहीं कि हमारे प्रभु हैं, और उनसे रथ चलवाता है और उनको कहता है ये रथ चलाओ, घोड़ों को पानी पिलाओ, घोड़ों को उनका पैर दबाओ घोड़ों का, और नौकर की भांति इनको लगाता है। इसलिए अर्जुन यदि मिल गया तो एक बाण में उसका काम समाप्त कर दूंगा। तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी हमारे प्रभु द्वारका में सो रहे हैं, और उनको अपनी एक साधारण शरीर की लज्जा के लिए प्रभु जी को बुलाया, और वो पलंग छोड़ करके बिना जूती के और वहां आए, उसके कपड़े बन गए, कहाँ की सेवा करती, और उनको इस काम में नियुक्त किया, वो भी आराम के समय में। यदि मैं उसको देख लूं तो ये फरसा उसी के सिर पर गले पर जाएगा, पहला उसका गला उतार करके कोई बात होगी, इसलिए हमने दो रखा है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, सचमुच में ये बात तो हमने गलती की। इसके बाद में वहां से चले आए, कृष्ण के पास में आए, कृष्ण से ये बात कही। अर्जुन अब समझ रहे हैं कि मैं कितने पानी में हूं, अपने लिए मैंने कष्ट दिया और द्रौपदी जी भी कष्ट दे, किंतु बात क्या है? वो जो महात्मा जी वो बड़े हैं ना, द्रौपदी बड़ी है ना अर्जुन बड़े हैं, भक्ति के हिसाब से कौन बड़े हैं?
द्रौपदी बड़ी है।
अर्जुन कृष्ण के सखा हैं, वो महात्मा जी अभी कृष्ण का दर्शन पाया कि नहीं कोई ठीक नहीं, और वो कृष्ण के हाथों में, अर्जुन के हाथों में और द्रौपदी के हाथों में बीत गया है। वो क्या चीज है? प्रेम। इनका प्रेम अभी प्रेम नहीं है, इनका भी कर्तव्य बोध है। साधारण मनुष्य होगा तो ये कहेगा सचमुच में द्रौपदी ने उनको आराम के समय में बुलाया और उनके आनंद को, उनके विश्राम को नष्ट कर दिया, ये ठीक नहीं। और अर्जुन महाभारत युद्ध में कृष्ण को अपना नौकर बनाया और उनसे अस्त्र ग्रहण कराया और उनके बाणों से शरीर को छलनी भीष्म पितामह कर्ण द्रोणी किया, ये तो बहुत खराब अपने लिए किया। किंतु जब देखा जाता है तो उनको सदगुरु नहीं है अभी, किनको? महात्मा जी को अभी साधन कर रहे हैं, और ये अर्जुन साधन की भूमिका पार कर गए हैं, कृष्ण के सखा हो गए हैं। ये महाभारत युद्ध किसके लिए लड़ रहे हैं? अर्जुन ने तो कह दिया हम नहीं लड़ेंगे, ये लड़वाए किसने? कृष्ण ने। इसलिए कृष्ण ने खुद इनसे कराया, इसलिए कृष्ण ने ही अर्जुन को लगाया है। ये साथी का काम भी अर्जुन ने नहीं कराया, ये किसने किया? खुद किया। उनके घोड़े कौन धो रहा है? कृष्ण धो रहे हैं। किस लिए धो रहे? अपनी भक्त वात्सल्य रूपी प्रेम को दिखला रहे हैं जगत में, अर्जुन के लिए नहीं, ये विश्व को दिखला रहे हैं। ये मैं प्रेम से बताऊंगा और किसी चीज से? द्रौपदी के प्रेम से तो इतने बद्ध है कि अर्जुन से भी वो श्रेष्ठ है। असल में महाभारत का युद्ध कहो तो किसके लिए हुआ? द्रौपदी के लिए किया, कृष्ण ने करवाया। इन आतताइयों को, बदमाशों को, अत्याचारियों को दंड देने के लिए, और द्रौपदी के बहाने उन्होंने सब असुरों का ध्वंस कृष्ण ने किया। ये द्रौपदी नहीं होती तो ये कुछ नहीं, महाभारत इत्यादि नहीं होता। एक द्रौपदी के लिए जब देखा जाए, कृष्ण ने उसकी इच्छा से, या उलट करके देखो, कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए द्रौपदी ने ये सब भूमिका निभाई। द्रौपदी जी महान है। द्रौपदी के प्रेम के साथ में अर्जुन का ही प्रेम नहीं तुलना में हो सकता है, तो फिर उस महात्मा जी का क्या? किंतु साधारण लोगों के लिए यही दिखता है, बहुत वो महात्मा जी बहुत बड़े महात्मा है, और ठीक ही है साधारण। ऐसे ही कृष्ण के प्रेम का विचार करना चाहिए, गोपियों के प्रेम का विचार करना चाहिए, और वैसा ही बनने की चेष्टा करनी चाहिए। हनुमान जी जितना सेवा करते हैं ऐसे मालूम पड़ता है जो भरत जी भी नहीं कर सकते, किंतु भरत जी में और हनुमान जी में किनका प्रेम ऊंचा है? भरत जी नहीं होते तो राम के प्रति इतना भूतल में जो भाव है, भरत जी नहीं होते तो नहीं। भरत जी इतने बलवान थे जो वो पर्वत को लेकर के आ रहे थे और उधर ही रास्ते से जा रहे हैं, और उन्होंने राम राम कहते हुए जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा बाण मारा जो झट नीचे गिर गए, वो भी तिनके के बाण से। राम राम कहते जब नीचे गिरे, कारी ये तो कोई भगवान का भक्त है। फिर उनसे जब मिले तो इनका मालूम हुआ जैसे वहां पर युद्ध रावण रावण का चल रहा है। भरत जी को मालूम नहीं है ये यहाँ पर युद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा जी आप जल्दी से चले जाइए। उन्होंने कहा जी मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा जैसे आपको जाने में विलंब होगा, मैं बाण मारता हूं आप एक क्षण में चले जाएं। हनुमान जी उनके चरणों की वंदना की, उनके प्रेम को सराहा और चले गए, अपने आप चले गए। भरत जी का प्रेम और अगाध है, बहुत अगाध। और उन लोगों सबसे गोपियों के ब्रज में रहने वाला कोई भी गोप है सखा है उन लोगों का है। एक सुबल जी को ले लीजिए, मधुमंगल जी को ले लीजिए, कृष्ण के हृदय ही है। यशोदा जी और हैं, गोपियां और ऊंचा है। यदि कोई भगवान का भजन करना चाहे महाप्रभु जी के लाइन में तो उन गोपियों का भाव लेकर, तब तो ब्रज का प्रेम हो सकता। और एक कितनी कर